जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय विजय सुत बॉडी फ्री एज ए सोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल श्री श्री ये व्यस्त और आत्मा से लिए मस्त हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ जय श्री कृष्ण न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो पॉडकास्ट पे हम लोगों को सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में और इसके लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी तीर्थ यात्रा ऐसी हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमारे घर बैठे ही आरंभ हो चुकी है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में अपना कर खुश रह सके। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है हम सरल भगवद गीता का कोर्स कर रहे हैं उसमें हम अध्याय दो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली ये चैप्टर कर रहे हैं। अध्याय दो पूरी भगवत गीता का सार है और भगवत गीता पूरे शास्त्रों का सार है। फिर हमने किए थे 65 और 66 वर्सेस। तो 65 वर्स में हमने समझा 64 वर्स में था ना कि राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पता नहीं होता अपितु उसको परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। मींस उसका अंतकरण उसका मन निर्मल हो जाता है ना स्वच्छ हो जाता है मतलब वो निर्मलता को प्राप्त करता है। देखो राग द्वेष से रहित होने पर ना अंदर चेंजेस आएंगी है ना। कहाँ पे हम राग द्वेष से भरे रहते थे है ना राग द्वेष से युक्त रहकर सारे कर्म करते हैं तो दोनों के कर्म करने में और उसके रिजल्ट में दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है ना। जब राग द्वेष से रहित हो जाता है एक व्यक्ति तो उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो क्या होता है फिर 65 वर्ष में परमात्मा की कृपा प्राप्त होने पर जब एक व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है तो मनुष्य क्या होता है फिर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ही हमें पता नहीं होती कि भगवान के साथ जब हम जुड़ते हैं तभी हम ट्रू हैप्पीनेस फील करते हैं। भगवान की कृपा से जो खुशी जो आनंद जिसको बोलते हैं वो हमें कभी भी वर्ल्डली लाइफ में ये खुशी ये आनंद नहीं मिलती। मतलब उसको फर्क पड़ने बंद हो जाता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जॉब में क्या चल रहा है उसकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है उसको उसका फर्क पड़ने बंद हो जाता है ना। क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त होने पर जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है मतलब उसको आंतरिक आनंद जब प्राप्त होता है जिसको कोई छीन नहीं सकता है ना। और दूसरा एक तो प्रसन्नता मिल जाती है उसको खुश रहता है एक व्यक्ति आंतरिक आनंद को प्राप्त करता है। और दूसरा क्या होता है जब एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता अब उसके जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में दुख नहीं आते दुख तो आते हैं इसका अर्थ ये है कि अब उसको उन दुखों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है जैसे सुख नहीं रहे वैसे दुख भी नहीं रहेंगे है ना। जब आप भगवान से जुड़ जाते हो भगवान की कृपा मिलती है प्रसन्न रहते हो आप आंतरिक आनंद को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको दुखों के बारे में सोचना ये स्ट्रगल्स ये बस छोटी सी बातें लगती हैं है ना। आपको लगता है कि ये सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह है दिन और रात की तरह है जैसे दिन और रात ने आना ही आना है सर्दी और गर्मी ने आना ही आना है वैसे ही सुख और दुख हमारे जीवन में आते ही रहेंगे है ना। आप ट्रू सेंस में अपनी जर्नी को इंजॉय कर पाते हो है ना। और भगवान बता रहे हैं कि प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है मतलब दृढ़ निश्चय बुद्धि हो जाती है फिर अब उसकी बुद्धि में कोई शंका नहीं रहती। हमने 66 वर्ष किया देखो 66 वर्ष में भगवान हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी इसका मंत्र हमें बता रहे हैं है ना। देखो हमने बहुत दुनियादारी की पढ़ाई की स्कूल में गए कॉलेज में गए यूनिवर्सिटी में गए या घरों में भी किसी ने भी एक दो घंटे का हमें लेक्चर नहीं दिया इस बारे में कि सुख और शांति इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हैप्पीनेस भी कोई टॉप टॉपिक है, दुनिया भर के निंदा चुगली में पड़े रहते हैं हम सब, हमारे आसपास के लोग, है ना, लेकिन जिससे हमारी लाइफ बदलनी है ना, एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शांति लाइफ में कैसे लाई जा सकती है ना, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं होते, और फालतू के दुनियादारी के टॉपिक जिनका कोई मतलब नहीं है। आज कुछ उनका डिस्कस करने का टॉपिक रहता है दुनियादारी के लोगों का, कल कुछ और टॉपिक हो जाएगा, मतलब वो दिन महीने साल यही करते रहते हैं, है ना। लेकिन खुश कैसे होना है, शांति में कैसे रहना है, लाइफ को कैसे पीसफुली हैंडल करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ताकि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं। देखो, एक व्यक्ति में अगर एंगर इशू होगा तो वो कभी भी एक अच्छी लाइफ लीड नहीं कर पाएगा, ना उसकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, ना उसकी जो बाहर जॉब वगैरह कर रहा है, बिजनेस में लगा हुआ है अगर एक व्यक्ति, तो उसको वहां भी ये चीजें इफेक्ट करती हैं, है ना। लेकिन हमारे दुनियादारी में ऐसे कोई टॉपिक नहीं होते फ्रेंड्स की वो डिस्कस किए जाए, और ना ही हम करते हैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस, क्योंकि हमें ही नॉलेज नहीं होती तो हम कैसे डिस्कस करेंगे दूसरे लोगों के साथ। तो भगवान ने एक ही श्लोक में हमें बता दिया कि सुख का कॉन्सेप्ट बता दिया, शांति का कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना। वो इसलिए नहीं पता था फ्रेंड्स हमें क्योंकि जो सिस्टम बनाने वाले लोग है, जो हमारे घर वाले हैं या जो पढ़ाई करवाने वाले टीचर्स थे, उनको खुद ही नहीं पता था कि मन की शांति और सुख कैसे मिलता है ना। तो देखिए, भगवान एक ही वर्ष में हमें ब्यूटीफुली 66 वर्ष में बता रहे हैं कि जो मुझसे जुड़ा नहीं होगा उनकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, है ना। और जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती, मतलब उसकी सीट पर भगवान श्री कृष्णा नहीं होंगे, तो फिर उसका मन स्थिर नहीं हो सकता, है ना। और जब मन स्थिर नहीं है तो शांति नहीं हो सकती, और जब किसी का मन शांत नहीं है तो सुख की कल्पना करना, खुशी की कल्पना करना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कहा भगवान ने, मतलब हमें रिपीट करना है बार बार, जो चीजें समझ नहीं आ रही है उनको बार बार रेपिटेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अब जैसे क्या कहा इस श्लोक में भगवान ने कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अगर मन को शांत करना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, मन स्थिर करना है तो बुद्धि को दिव्य बनाने पड़ेगा, और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए हमें ईश्वर से स्ट्रांगली जुड़ना है ना। और जब हम ईश्वर से स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं तो बाकी सारा प्रोसेस अपने आप ही हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट लो पढ़ लो मीनाक्षी जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 67। अनियंत्रित इंद्रियों में से किसी एक में भी यदि मन रमा रहे तो बुद्धि का उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे वायु का तीव्र वेग जल में चलने वाली नाव को दूर तक बहा ले जाता है। आई रिपीट, अनियंत्रित इंद्रियों में से किसी एक में भी यदि मन रमा रहे तो बुद्धि का उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे वायु का तीव्र वेग जल में चलने वाली नाव को दूर तक बहा ले जाता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। देखो फ्रेंड, इस श्लोक में भी हमें मन और इंद्रियों के बारे में ही भगवान समझा रहे हैं, है ना। तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां और मन बहुत पावरफुल है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें बिल्कुल कॉन्शियस होकर चलना चाहिए, सतर्क होकर हमें चलना चाहिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है फ्रेंड्स, वो कठिन होता है ना। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात सुनी होती है ना हमने। तो इसमें यह समझाया जा रहा है कि मान लीजिए आपने बहुत सारी इंद्रियों को काबू भी कर लिया, लेकिन मान लो आपका मन एक पर्टिकुलर इंद्री के किसी विषय पर अट्रैक्ट हो गया और उसके बारे में सोचना शुरू हो गया, है ना, तो क्या हो जाता है, बुद्धि का हरण हो जाता है। बुद्धि मतलब भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर एक पर्टिकुलर इंद्री के साथ मन अटैच हो गया ना, उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया मन ने, तो बुद्धि का उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे वायु का तीव्र वेग, है ना, जो तेज से वायु चल रही है वो जल में चलने वाली नाव को बहुत दूर तक ले जाती है। इसको हम एक दो एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी उदाहरण आता है फ्रेंड्स। आपने शायद स्टोरी सुनी भी होगी कि सौबरी मुनि ने जल समाधि ले ली थी। वो भगवान के बहुत भक्त थे और वो बहुत तपस्या करते थे। भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जल समाधि ले ली थी सौबरी मुनि ने। जब वो जल समाधि में थे, उन्होंने मछलियों को संभोग करते हुए देखकर उनके अंदर भी भोग लालसा उत्पन्न हो जाती है ना, और वो जल समाधि से बाहर आ जाते हैं। सौबरी मुनि जल समाधि से बाहर निकले तो वो सम्राट मांधात के पास पहुंचते हैं, जिनकी 50 कन्याएं थी, है ना। तो वो अपनी बात रखते हैं कि मुझे आपकी एक कन्या से विवाह करना है। तो जब स्वयंवर होता है तो स्वयंवर में उनकी जो सारी जो 50 कन्याएं थी उनको वर रूप में माला डाल देती है, है ना। मतलब एक कन्या से विवाह करना था उनको, और मांधात सम्राट के 50 कन्याओं से उनकी शादी हो जाती है ना। तो हजारों साल के भोग विलास के बाद उनको रियलाइजेशन आती है कि वो क्या करने चले थे जल समाधि में और कहाँ पे वो पहुंच गए। मतलब हम सबको यही सीख लेनी चाहिए इस कहानी के द्वारा कि सौबरी मुनि तो बहुत आत्म ज्ञान में बहुत आगे थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी गिरावट का केवल एक ही कारण था कि उन्होंने खुद को मछली के यौन समुद्रों से जोड़ दिया। मीन्स उनके आंख रूपी इंद्री ने यह दृश्य देखा और वही भोग की लालसा उनकी जल में उत्पन्न होगी, है ना। तो उनकी इंद्रियों और मन ने उनका पतन करवा दिया, है ना। तो इसलिए हमें भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में केयरलेस नहीं होना फ्रेंड्स, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट, हमारी छोटी सी एक्सेसिव अटैचमेंट हमें इस रास्ते से गिरा सकती है ना। सौबरी मुनि तो बहुत आत्मज्ञानी थे, बहुत भगवान के भक्त थे, मन और इंद्रिय में कंट्रोल हो चुका था उनका, लेकिन फिर भी एक इंद्रिय ने उनका पतन करवा दिया। इसको एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, राजा भरत जी की स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं कि जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा, है ना। राजा भरत भगवान के शुद्ध भक्त और ज्ञानी व्यक्ति थे, और राजा भरत ने काफी समय तक राज किया ना। फिर बुढ़ापा आने पर बेटे को राजभार सौंप कर उन्होंने संन्यास ले लिया और ऋषि के पास आश्रम में चले गए। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो नदी में नहा रहे थे, तभी एक प्रेग्नेंट हिरनी वहां पर पानी पीने आई। मतलब वो हिरनी के पीछे ना एक शेर पड़ा हुआ था, है ना। तो वो पानी पी रही थी तो वो शेर ने पीछे से दहाड़ मारी और हिरनी ने घबराकर छलांग लगा दी, है ना। और वो प्रेग्नेंट थी तो कूदने से क्या हुआ, उसके बच्चे का जन्म हो गया और हिरनी ने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये देखकर भरत जी बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने हिरनी के बच्चे को अपने पास रख लिया। देखो, दुनिया के सब भोग विलास छोड़ चुके, इतना बड़ा राज्य, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ चुके, भरत को हिरन के बच्चे के साथ प्यार हो गया। और वो हिरन का बहुत ध्यान रखते थे, अपनी साधना के वक्त भी भरत जी का उस बच्चे में ही ध्यान रहता था। फिर जब भरत जी बूढ़े हुए और उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके मन में याद में वही बच्चा रह गया, मतलब हिरनी का बच्चा रह गया, उसी के बारे में सोच रहे थे वो। मतलब इस प्रकार हिरन के बच्चे की आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, इसलिए अगले जन्म में राजा भरत हिरन बनकर पैदा हुए फिर। लेकिन पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के कारण, हाई लेवल के ज्ञानी व्यक्ति थे वो, है ना। तो पूर्व जन्म में किए हुए तप व भक्ति के कारण भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद था। भरत जी को पिछली बातें याद करके बहुत पछतावा होता था कि सारा मोह छोड़ने का बाद भी वो हिरनी के बच्चे के मोह में पड़ गए और उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तो इसलिए इस बार वो हिरन के रूप में वो बिल्कुल सावधान थे, है ना। तो भरत जी हिरन के रूप में भी पुलस्त्य और पुहल ऋषि के आश्रम के पास ही रहे ताकि भगवान का भजन उनके कानों में पड़ता रहे, ताकि कोई गलती ना हो इस बार, है ना। तो जब उन्होंने हिरन का शरीर छोड़ा और तीसरे जन्म में उन्होंने एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण के घर जन्म लिया, वहां उनका नाम जड़ भरत हुआ। तो इस जन्म में भी उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण ही उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी, है ना। पिछला जन्म उनका हिरण का था ना, तो इस जन्म में वो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं तो उनका नाम जड़ भरत होता है ना। इसलिए इस जन्म में वो किसी से बात नहीं करते थे, वो बहुत ज्ञानी थे लेकिन वो इस तरह से दर्शाते थे कि मैं बहुत मूर्ख व्यक्ति हूँ, है ना। वो हर समय भगवान के ध्यान में रहते थे लेकिन दूसरों की दृष्टि में वो इस प्रकार दिखाते थे कि मैं बहुत पागल हूँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ, है ना। इसलिए उनका नाम जड़ भरत था, है ना। भरत जी को अपने मान अपमान का कोई विचार नहीं था, ये अपना हर कर्म बहुत सोच समझ कर करते थे, बहुत सावधान थे इस बार भी वो। उनको लगता था कि ताकि इस बार वो किसी भी कर्म बंधन में ना पड़े, है ना। फिर भरत जी ने प्रभु जी का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया, है ना। तो जड़ भरत की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि मन की जो हमारी आसक्तियां होती है ना, जो हमारी अटैचमेंट्स होती है, जो हमने दुनियादारी में अटैचमेंट्स लगाई होती है, जो किसी काम की नहीं होती, यही हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है फ्रेंड्स, है ना। और हम सब भगवान की भक्ति और ज्ञान के द्वारा ही इस आसक्ति से बाहर आ सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। है ना, तो हमें भी दुनियादारी के इस माया जाल को लाइटली नहीं लेना है फ्रेंड्स, है ना, हमें हमेशा सतर्क होकर चलना है, कॉन्शियस होकर चलना है ना। तो इसका बेस्ट तरीका है जो हमें गोलोक एक्सप्रेस में बताया जाता है कि अपने आप को बिजी रखो, सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में चलते रहो, क्योंकि जब आप बिजी होंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे है ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ना फालतू की चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, फालतू की निंदा चुगली में इन्वॉल्व नहीं होंगे, फालतू की दुनियादारी में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसमें घुस के हमें फिर दुख ही मिलता है। दूसरी कोई राय नहीं है कि जब हम ज्यादा दुनियादारी में उलझते हैं तो उससे सिवाय दुख के हमें कुछ नहीं मिलता है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु दूर तक बहा ले जाती है, वैसे ही अगर इंद्रियों की किसी एक विषय से आसक्ति हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, मतलब मन उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दे, बार बार विचार करना शुरू कर दे, तो वो एक ही इंद्री पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। देखो फ्रेंड, जब पुरुष वर्ड आता है ना, पुरुष मीन्स कि इसमें मेल फीमेल नहीं है, पुरुष मतलब मेल है ना, ये मतलब नहीं है, पुरुष मतलब कॉमन, तो मीन्स हम फोकस से चल रहे होंगे तो भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, और फिर इस माया जाल में फंस सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी फ्रेंड्स ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है, करना क्या है फिर, भगवान के बारे में देखना है, भगवान के बारे में सुनना है, और भगवान के बारे में ही कहना है। क्योंकि दुनियादारी की बातें बहुत अनगिनत बातें होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारी बुद्धि विभिन्न विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है ना, एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है, तीसरा व्यक्ति कुछ कहता है, जो भी हमारे आसपास के 15-20 लोग होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, सबका बोलने का ढंग, सबका सोचने का ढंग अलग अलग होता है ना, तो हमारा वो बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती फिर। लेकिन अगर हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा का चिंतन होगा, सिर्फ अच्छी बातें ही अगर हम सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि एक दिशा में चलनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार, मुझे तो इसी दिशा में चलना, इससे मेरा लाइफ बेटर हो रही है, तो मुझे इसी दिशा में चलना, मुझे क्यों दुनियादारी की बातों में फंसना है, उनसे उलझना है, क्यों नहीं मैं अपना नाम जाप में ध्यान दे लेती हूँ, मुझे परमात्मा को भोग लगाना है ना, या अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या अपने कोई हॉबी डेवलप करो, आपको गार्डनिंग का कोई हॉबी है, या आपको कोई स्टडी से रिलेटेड कोई, आपको जैसे हमारे ग्रुप में ज्यादातर यंग लड़कियां हैं है ना, तो आपको कभी लगा होगा कि मैंने स्टडी करनी थी, मैं कर नहीं पाई, तो आप वो कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, बीएड आप करना चाहते हो, या कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, या कोई बेकिंग में कुछ करना चाहते हो, या कुकिंग में कुछ भी सीखना चाहते हो नई चीजें, तो आप कर सकते हो, है ना। इससे क्या होता है ना, जो हमारा खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, तो मन एक डाइवर्ट हो जाता है कि यार नहीं, मुझे सही दिशा में चलना है, कुछ सीखना है, मेरी लाइफ बहुत छोटी है ना, और मुझे काम बहुत सारे करने वाले है ना, मुझे लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर कुछ बुरा जाएगा ही नहीं, और कुछ बुरा जाएगा नहीं तो हम बुरा कुछ करेंगे नहीं, छोटे छोटे अच्छे काम करेंगे तो जो सुख आते हैं जीवन में, तो अपने आप ही उसका आनंद आने शुरू हो जाता है। फिर पहले छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं है ना, फिर बड़े बड़े अच्छे काम करने लग जाते हैं हम लोग, डायरेक्शन चेंज हो जाती है हमारी बुद्धि की है ना, तो हम इस माया जाल से फ्रेंड बच सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां राइट डायरेक्शन में चल पड़ती है ना। तो जितना ज्यादा हम प्रभु के साथ जुड़ने का, उनकी सेवा करने का लालच करते रहेंगे, समाज कल्याण से जुड़े काम करेंगे, उतना ही हम माया के रोग से बचे रह सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो नेक्स्ट जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 69। जो सभी जीवों के लिए रात है, वही आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो सभी के जागने का समय है, वह आत्म विश्लेषक मुनि के लिए रात है। आई रिपीट, जो सभी जीवों के लिए रात है, वे आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो सभी के जागने का समय है, वे आत्म विश्लेषक मुनि के लिए रात है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं, देखो भगवान ने इस श्लोक में दो कैटेगरी के लोगों की बात की है। एक कैटेगरी है जो आत्म संयमी है, जो आत्म विश्लेषक मुनि हैं, योगी हैं, भक्त हैं, मतलब भगवान के रास्ते में बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, है ना, जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल रहे हैं, जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे भक्त लोगों की बात हो रही है। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो दुनियादारी के लोगों की बात हो रही है, जिनकी मन और इंद्रियां जिनके वश में नहीं है, है ना, जो भोगों में आसक्त है ना, उनको कोई मतलब नहीं है परमात्मा क्या है, हमें दुख क्यों आ रहे हैं, है ना, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, सुख का कॉन्सेप्ट समझना, शांति का कॉन्सेप्ट समझना, उनके लिए बिल्कुल
अंधेरा है। दोनों लोगों की जीवन शैली कुछ दिन और रात की तरह ऑपोजिट होती है फ्रेंड्स। मतलब जो ईश्वर के रास्ते में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका जीवन जीने का तरीका जो होगा, डिसीजंस लेने का जो तरीका होगा, जो सोच होगी वो मान लीजिए ए होगी, और जो दुनियादारी के लोग होंगे उनका सोचने का तरीका, डिसीजन लेने का तरीका, उनका दोस्त बनाने का तरीका, हर एक चीज जेड होगी। देखो लक्ष्य दोनों का सुख ही है, दोनों का लक्ष्य सुख पाना ही है ना, सेल्फ रियलाइज सोल का भी, आत्म संयमी मनुष्य का भी, और दुनियादारी में फंसी सोल का भी, दुनियादारी में फंसे व्यक्ति का भी। लक्ष्य सुखी है लेकिन एक अपने आप को शरीर और इंद्रिय मानता है, मन का दास है, है ना। जैसे पशु पक्षी दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो दुनियादारी वाला व्यक्ति है वो रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों को संग्रह करने में, धन कमाने में लगे रहते हैं, है ना। इन मनुष्यों की तुलना भी फ्रेंड्स पशु पक्षियों में ही होती है। कारण क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं फ्रेंड्स वो भी भोग विलास में लगे रहते हैं, उनका ध्येय भी खाली यही होता है, खाना पीना, भोग करना और एक दिन चले जाना, है ना। दोनों ही जो पशु पक्षी है और जो भोग विलास में जुड़े हुए हैं व्यक्ति, दोनों ही का मतलब नहीं है परमात्मा से। उनको समझ ही नहीं है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, वो अपने भोग विलास में मस्त हुए पड़े हैं, मतलब वो परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, मतलब खाने पीने में व्यस्त रहते हैं, अपने भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, है ना। तो एक अपने आप को शरीर और इंद्रिय मानता है, उसको लगता है कि मेरे को बस भोग विलास में पड़े रहना है, मन का दास है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेता है। और एक अपने आप को आत्मा मान चुका है और अपने परम गंतव्य परमात्मा के प्रेम की तरफ, अध्यात्म की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसके डिसीजन लेने का तरीका, उसकी सोच का तरीका, उसकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। देखो फ्रेंड, जो वर्ल्ड में जो मेजोरिटी लोग है ना, जो बॉडीली कम्फर्ट्स को ही अपना गोल बनाकर चलते हैं, ज्यादातर 99% लोग इस प्रकार के लोग हैं। उनकी डिजायर्स का, उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता, उनके लालच का कोई अंत नहीं होता, है ना। वो हमेशा चीजों के पीछे भागते रहते हैं, है ना। उनको लगता है चीजों को पाना ही सुख है। 10 लाख की गाड़ी लेंगे तो उनको लगेगा कि मुझे 20 लाख की गाड़ी लेनी है, 20 लाख की गाड़ी लेनी है तो उसको उनको लगेगा क्या मुझे 50 लाख की गाड़ी लेनी है। अब जो 50 लाख की गाड़ी ले लेंगे तो क्या लगता है आपको कि उनको लगेगा नहीं कि आगे मैं 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है। मतलब उनकी कोई डिजायर्स की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि मन है ना, मन तो चंचल है, मन तो बहुत सारी डिजायर्स करता है, लेकिन ये तो हमें चॉइस लेनी है ना कि हमें इस डिजायर को पूरा करना है या नहीं करना है। लेकिन जो संसारिक भोग विलास में पड़े होते हैं उनको लगता है कि बस एक बार जीवन मिला है, बस उसको भोगना ही मेरा परम ध्येय है ना। अब जो भक्त होते हैं, जो आत्म संयमी लोग होते हैं, आत्म विश्लेषक मुनि होते हैं, उनको हायर टेस्ट मिल गया होता है ना, उनको आध्यात्मिक आनंद मिल गया होता है फ्रेंड्स, उनको मन की शांति मिल गई होती है ना, और वो भगवान की सेवा को, समाज के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाते हैं, है ना। तो दोनों के लक्ष्य बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एक का लक्ष्य है अपनी भौतिक इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करते रहना, पशु पक्षियों वाला जीवन जीना। क्या डिफरेंस है देखो हमारा और पशु पक्षियों के जीवन में, क्या डिफरेंस होता है ना। उनका भी यही स्वभाव होता है कि खाना पीना, भोग करना, सोना और फिर चले जाना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और जो भोग विलास में एक व्यक्ति होता है वो भी यही करता रहता है, वो चीजों का संग्रह भी करता रहता है साथ साथ में, है ना। भोग करना, रात दिन अपने सुख आराम की चीजों में लिप्त रहना, टीवी देखते रहते हैं ऐसे लोग, खाने पीने की चीजों में एंगेज रहेंगे या धन कमाने में लगे रहते हैं, है ना। तो एक का लक्ष्य है अपने भौतिक इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करते रहना। लेकिन फ्रेंड्स देखो, अगर हम आग में घी डालते रहेंगे तो वो आग बुझेगी थोड़ी बल्कि बढ़ती जाएगी ना, है ना। वैसे ही वर्ल्डली लाइफ में एक इंसान जितना ज्यादा अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता रहता है उतनी ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिलती, है ना। उसकी एक डिजायर पूरी होती है तो एक और गोल बना लेता है कि अब मैं इस गोल को पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन से और ये चल रहा है ना। तो ये तो हो गया वर्ल्डली पर्सन जो दुनियादारी में फंसा हुआ है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो आत्म सेमी मुनि है, उसकी चॉइसेस हमेशा इनर प्लेजर, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, समाज कल्याण में मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, इस तरह की उसकी चॉइसेस रहेंगी। तो इस श्लोक में भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि एक तरह से दोनों तरह के लोगों की उनकी जिंदगी रात और दिन की तरह विपरीत होगी हुई है। मतलब बेसिकली भावार्थ ये है कि जिस आध्यात्मिक आनंद में एक भक्त जगा हुआ है, आनंदित होता है, वहां संसारी मनुष्य सोया हुआ है, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में मजे ले रहे हैं। और संसारिक आनंद में एक संसारी मनुष्य जगा हुआ है, सुख दुख मान सम्मान सफलता असफलता राग द्वेष चीजों को संग्रह करने में, खाने पीने में, अपने सुख आराम में पड़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति है ना। तो यहाँ आत्म विश्लेषक मुनि, यहाँ आत्म संयमी मुनि सोया हुआ है। मीन्स दोनों की जिंदगी जीने के तरीके में, दोनों की जीवन शैली में, सोच में बहुत डिफरेंस होता है। दिन और रात से भगवान ने इसे समझाया हुआ है। इस श्लोक का मतलब वास्तव में ये है ना। तो ये बात हम सबको समझने की जरूरत है और नव साधक को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नव साधक डिवोशन करता है ना और उसकी लाइफ जब बदलना शुरू हो जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और डर भी जाता है। उसे लगता है कि मेरी लाइफ कुछ बदल रही है ना, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ है ना, और आसपास के लोगों से निंदा भी मिल रही होती है क्योंकि वो डिफरेंट अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना। तो फ्रेंड्स हमें समझने की जरूरत है, अगर हम बाकी लोगों की तरह मेजॉरिटी की तरह दिखेंगे या लगेंगे तो हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो सकते। आप सोचो आईएएस निकालने वाले लोग तो कम ही होते हैं ना। मान लो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट आईएएस की पढ़ाई कर रहा है ना, और वो सोचे कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं तो अपने फ्रेंड्स के जैसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, ना मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, ना मैं टीवी देख रहा हूँ, ना ही मैं कुछ घूम फिर रहा हूँ, तो कुछ गलत नहीं हो रहा फ्रेंड्स। अगर आईएएस निकालना है सीरियसली तो भीड़ से तो हटना ही पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जो स्पिरिचुअली ग्रोन कर चुके हैं है ना, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं, उनका टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका अलग ही होता है ना। जैसे वर्ल्डली लाइफ के लोग एक वर्ड यूज करते हैं टाइम पास है ना, क्योंकि उनको ये कोई ज्ञान नहीं होता, ये कुछ पता नहीं होता कि हमारे सबके पास लिमिटेड टाइम है, सीमित समय है हम सबके पास। एक बार आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा था कि अगर आप तराजू लोगे ना तो एक क्षण की वैल्यू करोड़ों रुपयों से ज्यादा होती है, पर जो संसारी मनुष्य है वे पैसा बचाने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन समय बर्बाद कैसे हो रहा है उसमें व्यक्ति का कुछ ध्यान नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मुझे तो टाइम पास करना, टाइम पास करने के लिए वो विंडो शॉपिंग करेगा, टीवी देखेगा है ना, फोन या टीवी में सीरियल या पिक्चर्स देखता रहता है ना। तो उसको क्या लगता है कि मैं किस प्रकार बस मजे कर लूं, इंद्रियों की हैप्पीनेस को ऐसा व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस समझता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको राइट नॉलेज नहीं होती है ना। उसको क्या लगता है कि एक बार जिंदगी मिली है, बस मुझे भोग विलास करते रहना है। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग होते हैं वे अपने हर एक क्षण को भगवान की सेवा में, जगत कल्याण के लिए यूटिलाइज करते हैं है ना, क्योंकि वो हर समय प्रिपेयर होते हैं कि कोई भी समय हमारा शरीर छूट जाएगा। लिमिटेड टाइम है हमारे पास, बहुत सारे काम है मुझे करने वाले, लेकिन हमारे पास लिमिटेड समय है, कोई भी क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है ना। तो इस श्लोक के द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और आपकी जीवन शैली बाकी लोगों से आपको डिफरेंट लग रही है तो आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने रास्ते से भटकना नहीं है, है ना। आपको अपने रास्ते में डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहना है ना, और भगवान की कृपा से आपको लाइक माइंडेड डिवोटीज भी इस जर्नी में जरूर मिलेंगे है ना। क्योंकि ये चीज तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है ना कि अगर हम निंदा चुगली करते हैं तो हमें उस टाइप के लोग मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, अब हम अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं तो हमें फिर इस तरह के लोग मिलने अपने आप ही जर्नी में शुरू हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने डिसाइड करना है ना कि हमने फोन में क्या देखना है ना, कम से कम मान लो आपने टाइम पास ही करना है, चलो आपने फोन पकड़ लिया है ना, तो आपको ये चॉइस आपकी है ना कि आप फोन में क्या देखते हो। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हो तो आपको बाकी सारी चीजें देखनी बंद करनी पड़नी है ना, क्योंकि कुछ भी आप अंदर घुसा रहे हो अपने अंदर है ना, तो उसके द्वारा ही आपका अंतःकरण बन रहा है, आपका मन बन रहा है, आपकी वाणी से वही बातें फिर निकलेंगी। आप जो अंदर लेते हो, जो क्या आप ज्ञान अंदर ले रहे हो, क्या आप देख रहे हो है ना, भगवान से रिलेटेड चीजें देख रहे हो या फिर अपनी मजे वाली चीजें देख रहे हो है ना, तो ये चॉइस हमने लेनी है ना, है ना। तो जब हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो अब भगवान से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें ही अपने आप ही आना शुरू हो जाती है ना। तो मतलब जिस तरह का आपका नेचर होता है ना, जिस तरह का आप चाहते हो कि आपका जीवन हो है ना, उस तरह के लोग आपके साथ फिर अपने आप ही भगवान की कृपा से ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं है ना। ये हम लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना दी, आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था। और आज के जो दो श्लोक आपने करवाए हैं उनसे मेरी ये लर्निंग्स बनी हैं कि स्पिरिचुअल पाथ को कंसंट्रेशन से फॉलो करना इजी नहीं है, क्योंकि हम हमारी सभी सेंसेस को फुली कंट्रोल करके ही स्पिरिचुअल पाथ पर चल सकते हैं। अगर हमारा हमारी एक भी सेंस से कंट्रोल हटा तो हम हमारे स्पिरिचुअल पाथ से भटक सकते हैं और किसी ना किसी पर्टिकुलर वर्ल्डली चीज से आसक्ति हो सकती है। हमारी थोड़ी सी भी डिस्ट्रेक्शन हमारी सारी मेहनत बेकार कर सकती है, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम हमारी सेंसेस पर ध्यान रखना है और पूरी कंसंट्रेशन से प्रभु की ओर बढ़ना है। दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जिनका वर्ल्डली चीजों से अटैचमेंट होती है, दूसरे वो जो प्रभु से अटैच होते हैं, परंतु दोनों का मोटिव एक ही होता है, वो है सेल्फ प्लेजर। एक को अपनी सेंसेस को सेटिस्फाइड करके खुशी मिलती है और दूसरे को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से। एक का मन भटकता ही रहता है क्योंकि उसकी सेंसेस अनकंट्रोल होती हैं और वो उनको जीवन भर सेटिस्फाइड नहीं कर पाता क्योंकि उसकी डिजायर्स अनलिमिटेड होती हैं, बल्कि दूसरे का कंसंट्रेशन सिर्फ अपने प्रभु को प्रसन्न करने वाले कर्म करने में ही होता है और उसका उसके मन और सेंसेस पर फुल कंट्रोल होता है और हमेशा हर सिचुएशन में सेटिस्फाइड, कंट्रोल्ड, स्टेबल और इंटरनल हैप्पी होता है। इसीलिए हमें भी हमारी सेंसेस को फुली कंट्रोल करके हमेशा हमारे प्रभु श्री हरि की ही तरफ कॉन्सेंट्रेट रहना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज यूजुअल पूजा जी, ब्यूटीफुली आपने दोनों श्लोकों को अच्छे से समराइज कर दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मुझे आज का सत्संग बहुत ही आई ओपनिंग था, कहूँ तो बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो आज के सत्संग से जो मेरी लर्निंग बनी है वो इस तरह से है। एक बड़ा सिंपल सा जो हम कॉमन लाइफ अपने डेली लाइफ में हम ये वर्ड यूज करते होंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम अपनी सेंसेस पे अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी फाइव सेंसेस में एक भी सेंस अगर चूक जाती है हमारे सेल्फ कंट्रोल के लिए, तो हम वापस जहां से शुरू हुए थे शायद उससे भी पीछे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें भगवान श्री हरि कहते हैं कि हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखना है। हमें ऐसा नहीं है हम मन में विचार करें कि हमने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये मन का कंट्रोल हमारे फाइव सेंसेस से चलता है। उन फाइव सेंस इंद्रियों से अगर हमारी एक हमारी देखने की ही अगर हमारी, जिस तरीके से आपने एग्जांपल दी, उन्होंने जल समाधि लेके एक वहां से उनका सिर्फ देखने की ही दृष्टि से ही उनका मन भटक गया, तो इस प्रकार हमारी चाहे वो सुनने की है, हम किसी से गपचप कर रहे हैं, एक कान को रहता है अच्छा आज हमने किसी को फोन नहीं किया, फोन करके हम क्या करेंगे, हालचाल तो पूछेंगे, चलो वो पूछना भी है जरूरी है, लेकिन उसके साथ अच्छा आपको उसने क्या कहा, आपने आप मत कहो लेकिन आप किसी और से सुन रहे हो कि उसने हमें क्या कहा, उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसने हमें ये कर दिया, तो वो भी आप कहीं ना कहीं उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो वो चीजें हमें जो है कि हमें उससे भी कम करना है, अपनी हर सेंसेस को कंट्रोल करना है। दूसरा हमने ये सीखा कि दो तरह के जो है पुरुष होते हैं या व्यक्ति होते हैं। अब अगेन आपने एग्जाम्पल दी थी, बहुत सही एग्जाम्पल है कि लेकिन जैसे दिन रात है, जिसके लिए दिन है, दोनों का पर्पस यही है, जैसे पूजा जी ने भी कहा कि इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, इंटरनल हैप्पीनेस, लेकिन कईयों को लगता है कि हमारी लग्जरियस लाइफ हो जाए, हमारे पास असेट्स भी आ जाए और शायद उससे हमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं सच में बताऊं तो अंबानी को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अपने उस वो जो मनी या बैंक बैलेंस उसको कैसे वो इन्वेस्ट करे फर्दर, तो उसकी टेंशन है। तो लेकिन जहां की दूसरे हैंड पे जिसको प्रभु की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में जो आनंद मिलता है वो मुझे लगता है किसी रिची रिचेस्ट पर्सन को भी नहीं मिलता होगा। लेकिन दोनों की दौड़ किस तरफ है, अपने इंटरनल पीस हैप्पीनेस के लिए हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि हमें इंटरनल पीस जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमारी इंद्रियों को भोगने से, उनके जो है वो उनकी जो डिजायर्स है उनको फुलफिल करने से मिलेगा, या इंटरनली भगवान के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड करने में मिलेगा, उसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और हमें जितना हो सके प्रभु के साथ अपना रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके ही होगा। हरी हरी बोल। हरी हरी
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज यूजुअल मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली आपने बहुत अच्छी तरह से दोनों श्लोकों को अच्छे से समराइज किया और बताया कि जैसे हम निंदा चुगली में पड़े रहते हैं, मान लो हमने फोन किया है ना, और हम अगर सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट रहता है कि हम ये बातें सुन रहे हैं या कर रहे हैं, है ना। कोशिश करनी है परसेंटेज में हम ये चीजें थोड़ा कम कर दें। और देखो, सुख पाना दोनों का ही लक्ष्य है, जैसा कि आपने बताया और पूजा जी ने भी बताया ना, सुख पाना दोनों का ही, दोनों कैटेगरी चाहती है कि मुझे सुख मिले, मुझे हैप्पीनेस मिले, है ना। लेकिन दोनों का सुख पाने का जो तरीका होता है ना, वो बदल जाता है ना। सुख दोनों ही पा रहे हैं, हैप्पीनेस दोनों को मिल रही है, लेकिन वो तरीका डिफरेंट है ना। वो इंटरनल हैप्पीनेस को फील कर रहा है जो भगवान के रास्ते में चल रहा है ना। उसको समझ आ गई हुई है कि इन बातों से, निंदा चुगली से, है ना, कुछ नहीं होने वाला। अगर वो बात भी करता है तो उसको इस तरह से बात करता है कि किस तरह से कोई हल निकले। कोई बात हो भी जाती है मान लो, तो उसका ये अंदर से रहता है कि किस तरह से चीजें ठीक हो जाए, है ना। तो उस तरह से भी कई बार बात होती है ना। तो उसको हमने ऑब्जर्व करना है, हमारे अंदर इंटेंशन क्या है, है ना, कि हम मजा ले रहे हैं कि हम चीजों को सही दिशा में हो जाए, हमारा फोकस ये है ना। अगर हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते को हमने चूज किया है मान लो, है ना, तो हमें बिल्कुल सोच समझ के हर काम करना है। इवन किसी से बात भी कर रहे हैं, इवन सोच भी रहे हैं, है ना, तो कॉन्शियस होकर सोचना है कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं किस रास्ते में चल रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, सब बातें छोड़ दो, पहले तो ये सोच लेना है कि मेरे को अध्यात्म के रास्ते में चलना है या नहीं चलना है, मुझे भगवान के रास्ते में चलना है या नहीं चलना है। हाँ, अगर सोच लिया है ना, अगर सोच लिया, मन में दृढ़ निश्चय बना लिया, अब जो 3 सालों से चल रहे हैं, जो इनकी थर्ड रीडिंग है और जो रेगुलर नित्य निरंतर चल रहे हैं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं मन में सोच ही लिया ना, है ना, कि भी मुझे करना है, इस रास्ते में चलना है ना। क्योंकि दुनियादारी का जीवन जी के भी हमने देख लिया हुआ है ना, तो अब क्यों ना इस रास्ते में चला जाए, क्योंकि इस रास्ते में हम दुनियादारी का जीवन भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं और भगवान के रास्ते में भी चल रहे हैं और बेटर वे में सब कुछ हो रहा है ना। तो अगर किसी ने समझ ही ली ये बातें, तब बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे परसेंटेज में ही, चाहे हम चलो थोड़ा थोड़ा तो हम चल ही रहे हैं भगवान के रास्ते में, चाहे मैं बोल रही 2% ही चलना शुरू है, कुछ बातें समझ आने शुरू हुई हैं, अंदर ही कुछ जाना शुरू हुआ है, कुछ तो चेंजेस हैं, कुछ तो समझ आने शुरू हुआ, तो भगवान की कृपा है ना। उस कृपा को ऐसे नहीं जाने देना है, उसको संभाल के रखना है, उसके लिए कॉन्शियस रहना है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। आज भजन की टर्न पूजा जी की है। पूजा जी, आप भजन गा सकते हो। हरि बोल।
हरि हरि बोल। हरि हरि बोल एवरीवन। मुनादी, ये जो भी भजन मैं बोलने जा रही हूँ, ये भजन तो गुरु जी का है, तो मैंने अपने मन में राधे कृष्ण को ही गुरु, अपने गुरु मान लिया है। क्योंकि सबको ये कहते हैं कि गुरु धारना बड़ा जरूरी है, गुरु धारना बहुत जरूरी, गुरु नाम लेना। तो मैंने एक बार, मैं बैठी थी राधे कृष्ण के आगे, मैंने कहा सब मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि तुम ऐसे चैंटिंग करती रहती हो, गुरु जी का नाम ले लो, गुरु जी का। तो मैंने कहा मैं आज अपने मन में ये आपको अपना गुरु मानती हूँ, तो मैं जितनी बार ये भजन सुनती हूँ या गुनगुनाती हूँ ना, तो मेरे ध्यान में सिर्फ मेरे राधे कृष्ण ही होते हैं। और ये मैं गाने जा रही हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे दे आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे दे आई होइया। मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई होइया। मेरे कर्मा वाल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, तू सितारन हार कहां दे ओ, डुबियानू बने ना दे ओ, तू सितारन हार कहां दे ओ, डुबियानू बने ना दे ओ, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दर ते आस लगाई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, तब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी कितरे ठुकरा मिना, ए सोच के मैं घबराई होइया, मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेले करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। जय मेरे श्री राधे कृष्ण महाराज की।
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत ही प्यारा भजन गाया आज आपने, मैं लगता है आज तक आपसे सबसे बेस्ट पंजाबी भजन गाया, बहुत अच्छे जचते हैं आपको, अच्छा गाते हो, बहुत प्यारा भजन था, थैंक यू। फ्रेंड्स अब प्रेयर कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, जय श्री राधे कृष्ण।